चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। यदि यदा श्रुति श्रेष्ठ तत्ता देवी त्रोजनो शयत प्रमाण कुरुते लोकस तदनु वर्तते। भगवान ने गीता की तीसरी अध्याय के 21 के श्लोक में कहा है, यत यत आतरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है इतर जन्म माने दूसरे उसी के अनुसार आचरण करते हैं। असयत प्रमाण कुरुते, और वह श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाणित कर देता है कि मैं इस बात को मानता हूं इसको नहीं मानता, उसी के अनुसार लोग ऐसो आप बरतते हैं, आचरण करते। तो श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करना, आचरण का अनुकरण करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, ये दोनों बात हमारे लिए बहुत ही बढ़ करके है। तो सबसे उत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सबसे उत्तम श्रेष्ठ पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए। स्वयं भगवान राम ने तुलसीकृत रामायण के बीच के मां उपदेश देते हुए और अपनी प्रजा के प्रति उपदेश देते हुए उन्होंने ये बात खुद कही है। सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई,
मम अनुशासन
मानहि जोई। सो माने वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम प्यारा है। कौन? जो मेरे शासन को मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत उत्तम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे बढ़कर और कोई वार न कोई होने का। जो भगवान ने खुद उपदेश दिया है रामायण के मां श्री रामचंद्र जी ने रामायण में, श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में, तो अक्षर से उसका पालन करना चाहिए, एक नंबर बात है। उनका जो उत्तम जो आचरण वो करना चाहिए। हर एक काम के बीच के वहां सबसे बढ़कर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का बर्ताव है। तो भगवान ने जिस प्रकार का बर्ताव किया वैसा ही हम लोगों को आपने बर्ताव करना चाहिए। भगवान की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए श्री रामचंद्र जी की, और उनका जो आचरण का भी अनुकरण करना चाहिए। तो इससे भगवान की स्मृति भी रहती है और भगवान की लीला की भी स्मृति रहे, भगवान के स्वरूप की भी स्मृति रहे और साथ साथ वह गुणों की भी स्मृति रहे। और आचरणों में तो प्रभाव और गुण से भी आ जाते हैं। तो भगवान की लीला के साथ के बीच में भगवान के स्वरूप की समृद्धि और भगवान के गुणों की समृद्धि, प्रभाव की समृद्धि, और फिर उसका तत्व और रहस्य मिल जाओ तो बस बेड़ा पार। जिस प्रकार भगवान ने जनक नंदिनी सीता के साथ में जैसा व्यवहार किया, इसी प्रकार का व्यवहार हम लोगों को अपनी स्त्रियों के साथ में करना चाहिए। भगवान की सेवा के वास्ते सीता वन में जाना चाहती है, फिर भी भगवान सोचते हैं कि इनको वन में परिश्रम होगा तो मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेवा के लिए इसको क्यों साथ में ले जाऊं। तो भगवान ने इनकार कर दिया, किंतु फिर सीता का विशेष आग्रह देखा तो फिर भगवान साथ ले गए। तो हम लोगों को भी कहीं विदेश में जाना हुए और अपनी स्त्री को उसमें कष्ट होता हुए तो उसको साथ में नहीं लेना, और यदि उसका फिर विशेष आग्रह है तो उनके सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ले लेना, किंतु अपने आराम के लिए नहीं। ये बात अपने सीख रही भगवान के बर्ताव से। इसी प्रकार से थी, भगवान जब वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने प्रथम तो इनकार कर कि भैया तुम यहां ही रहो, माता पिता की सेवा करना ये नीति है, धर्म है। तो लक्ष्मण जी ने कहा नीति और धर्म का उपदेश तो उनको देना चाहिए जो संसार के बीच के हम भोग चावे, और आपने समझो कि कीर्ति चावे, विभूति चावे, कीर्ति चावे, उनको धर्म का उपदेश देना चाहिए। और मैं तो आपका सेवक और प्रेम से पाला हुआ एक हूँ, तो साथ ही लेना चाहिए, त्याग नहीं करना। भगवान ने सब प्रकार से देख लिया कि इनको नहीं ले जाऊंगी तो उनको दुख होगा, तो लक्ष्मण के संतोष के लिए भगवान ने लक्ष्मण को साथ में लिया, अपने आराम के लिए। लक्ष्मण तो जाता है भगवान की सेवा के लिए, और लक्ष्मण की माँ जो लक्ष्मण को भेजती है सो राम की और सीता की सेवा के लिए, किंतु भगवान जो उनको साथ लेते हैं अपने आराम के लिए। इसी प्रकार से थी, कहीं हम बाहर में जावें और हमारे भाई लोग कोई साथ में जाना चाहे तो अपने आराम के लिए उनको साथ में नहीं लेना, और उनके संतोष के लिए लेने में कोई दोष नहीं, और उनको यदि साथ में नहीं लेना तो दुख होता हो तो जरूरी लेना, अपने किसी के दुख में हेतु नहीं बनना। इसी प्रकार से भरत जी महाराज जो है भगवान के पास वन में गए और हर एक प्रकार से यह कोशिश करी कि भगवान राज करे, मैं उनका सेवक होकर, किंतु भगवान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ है, और पिता की आज्ञा का पालन करना अपना जो परम धर्म है उसमें भी कमी आती है। ये सोच करके भगवान भरत को साथ में लेना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से थी, जहां अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो उस जगह के बीच के वहां वो बात स्वीकार नहीं करता, वहां विशेष स्वार्थ सिद्ध होता था और बदले में भरत को तकलीफ होती थी। सीता को और लक्ष्मण जी को जो भगवान साथ में ले गए तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, भगवान के साथ में उनको आनंद ही था, और भरत को तो साथ में तो नहीं ले जाना था। एक प्रकार से भरत कहते थे कि हम और शत्रुघ्न दोनों वन को चले जाएंगे और आप जो है सो अयोध्या को लौट जाइए। तो भगवान ने समझा ये बात ठीक नहीं, माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन और सो भी अपने स्वार्थ के लिए, तो इस प्रकार से थी व्यवहार करना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ में व्यवहार किया, इसी प्रकार का व्यवहार हम लोगों को अपने भाइयों के साथ में करना चाहिए। और श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता के साथ में जैसा व्यवहार किया, ऐसा हम लोगों को अपने माता पिता के साथ में, बड़ों के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। माता जो कहती है वो चाहती है राम वन को जा, सीता जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दो और एक प्रकार से कोई बात नहीं। तो भगवान ने सोचा कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और पिता कहते हैं किंतु इनका वचन मिथ्या हो जाएगा तो फिर इनको भी परलोक में दंड मिलेगा। तो कहा हे कैकेयी, पिता की आज्ञा के लिए तुम जो कह रही हो क्या कह रही, पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद पड़ता हूँ, पड़ सकता हूँ, विष खा सकता हूँ, घर में जाना तो क्या बात। पर माता कौशल्या को कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी आज्ञा जो है जाने की है, किंतु माता की आज्ञा पिता से भी बढ़कर है, तो वन में जाने के लिए पिता की केवल आज्ञा नहीं, एक ही जो मेरी माँ उसकी भी आज्ञा है, तो उस तरफ में दो हो जाते हैं, इस तरह तुम एक है, तो उनकी आज्ञा पहला पालन कर लूं, उसके बाद में तुम्हारी आज्ञा का भी पालन करूं। तो जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने सबको संतोष कराते हुए और संजय की आज्ञा का पालन किया, माँ ने कहा कि बेटा जो कहकेयी कि वन में जाने की राह है तो तू बेशक वन में जा, देवी देवता एक प्रकार तेरी रक्षा करें और तुम सुख पूर्वक ऐसा वन में जाओ। तो भगवान राम एक बड़ा प्रेम से वन में गए। तो माता पिता की आज्ञा का पालन भगवान राम ने जैसा किया वो एक नमूना है, और अपने मित्रों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी भगवान राम से सीखना चाहिए, कि पहला अपने मित्रों का उपकार कर करके और फिर उनसे काम लेना चाहिए। सुग्रीव जैसे भगवान के मित्र बने अग्नि की साक्षी से, तो पूछा भी अब तुम्हारे को कौन बात की तकलीफ है, तो सुग्रीव ने अपनी तकलीफ बतलाई, तो भगवान ने पहले ही प्रतिज्ञा कर दी, सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ गये न उबरे प्राण सियाव रामचंद्र की जय। हे सुग्रीव तुम सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा, ब्रह्म माने ब्रह्मा और रुद्र उनकी भी वो शरणागत चला जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, मैं ब्रह्मा जी को शिव जी को अपना समझा लूंगा और उसको मार कर, क्यों कि तुम हमारे मित्र हो ना, जे न मित्र दुख होगी दुखारी, प्रति नहीं भी लोकत पातक भारी, जो अपने मित्र के दुख को देख करके और दुखी नहीं होता है, होना तो चाहिए हर एक आदमी के दुख को देख करके दुखी, ये संत और महात्मा पुरुषों का स्वभाव है। तुलसीदास जी ने कहा कि भी संतों का कैसा स्वभाव होता है, दुष्टों का कैसा होता है कि उन्होंने उदाहरण दिया कुठार और चंदन का, कुठारा चंदन को काटता है तो चंदन अपने सुगंध उसमें बसा देता है, और दूसरे के दुख में जो दुखी और दूसरे के सुख में जो सुखी है ये संतों के लक्षण है, और दूसरे के सुख से जो दुखी होता है और दूसरे के सुख से एक प्रकार से दुखी हुए और दूसरे के दुख से सुखी हुए ये असंतों की लक्षण। तो संतों की तो ऐसी महिमा है, और भगवान यहाँ मित्रों की बात कह, संतों की बात तो और ऊंची है। भगवान कहते हैं कि जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता वह ऐसा पापी है कि उस पापी का कोई दूसरा दर्शन करे तो वो भी पाप का भागी हो जाए, ऐसा पापी है। तो इस प्रकार से मित्रों के साथ में व्यवहार करना चाहिए, अपना जो दुख है उसको तो विसार देना चाहिए और अपने मित्र के दुख को समझो कि अपने काम में लेना चाहिए, उसका नाप तोल बताते हैं। निज दुख गिरी सम रज करी जाना,
निज दुख गिरी सम रज करी जाना,
मित्र के दुख रज मेरु समाना,
मित्र के दुख
अपना पहाड़ के समान दुख हुए तो उसको एक रज के समान बाड़ी के किणके के समान समझना चाहिए, और अपने मित्र का दुख यदि बाड़ी के किणके के समान हुए तो उसको मेरु पहाड़ के समान समझना चाहिए। भगवान का ये कहना है कि सीता का दुख मेरे कोई कम नहीं है, वो मेरे लिए पहाड़ के समान है, किंतु उसको मैं गृह के समान समझता हूँ। और ये बालिका और सुग्रीव का बैर होकर के जो सुग्रीव को जो दुख है वो तो एक हमारे लिए किड़के के समान है, एक ही बाण का काम है, उसको मैं पहाड़ के समान समझता हूँ। तो जिसको मैं पहाड़ के समान समझता हूँ वो काम उन्हें पहला करना चाहिए, इसलिए प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। पर सीता को तो भगवान लौट कर वापिस लाएंगे, वहां एक बाण से काम नहीं चले, वह तो हजारों बाण चलाने पड़ेगी, और केवल अकेले भगवान नहीं सारी सेना को साथ में लेकर के रावण से लड़ना होगा, क्योंकि वो जो मुकाबला है पहाड़ के समान। तो भगवान ने अपने पहाड़ के समान जो दुख है उसको तो भुला दिया, और अपने प्यारे मित्र का जो मामूली जो दुख था उसको पहाड़ के समान समझ करके पहले उसका काम किया, बाली को ऐसे मार डाले। और जो आदमी सामने तो मुंह स्वाती बात करे और परपुट के बीच के उसको घात कर दे, तो ऐसा जो दुष्ट पुरुष है एक प्रकार से कि उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अपना जो मित्र है और उस पर आपत्ति आ गई तो उस वक्त में उसके साथ में सोगुणा प्रेम करना चाहिए। तो अब सुग्रीव के ऊपर आपत्ति आ गई, बेचारा मरा मरा फिरता है, ऐसे ऋषि मुख पर्वत के ऊपर लुक करके रहता है, यहाँ वो आ नहीं सकता सांप भय से, तो इस समय में इसके साथ में हमको सोगुणा प्रेम करना चाहिए, ये उनकी नीति है और ये उनका बर्ताव है, ये कारण है। आपति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत नित्र गुण एहा, कहती है संत जो मित्र होते हैं उनके ऐसे गुण हैं क्या कि अपने मित्र में आपत्ति आ जाएगा तो उसे 100 गुना अधिक प्रेम करते हैं। ये सब बात कह करके और भगवान ने शेष के बीच के मां निश्चित कह दिया कि तुम कोई बात की चिंता मत करो।
सखा सोच त्याग हु बल ए मोरे,
सखा सोच त्याग हु बल ए मोरे,
अरे सब विधि घटव काज मह तोरे,
और दूसरा ऐसा भी पाठ आता है
सब दीदी करव काज में तोरे,
हो सके मेरे बल के भरोसे पर तुम अपने शोक का त्याग करो, मैं सब विधि सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा इस लोक और परलोक। बाली को मारना इस लोक का कार्य सिद्ध करना और संसार सागर से उद्धार कर देना ये परलोक का कार्य सिद्ध। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार का व्यवहार सुग्रीव के साथ में किया ऐसा ही व्यवहार अपने मित्रों के साथ में करना चाहिए। और जो अपनी शरण आ जाता है उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने और भविष्ण के साथ में, भविष्ण शरण आ गया तो शरण आए के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वहां सुग्रीव आदि मित्रों के साथ में भी आपने बहुत उच्च कोटि का व्यवहार राम कर रहे हैं और भविष्ण के साथ में, जब भविष्ण भगवान की शरण आया तो बंदरों ने आकर के खबर दी कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण आया है, आपसे मिलना चाहता है, क्या आज्ञा है। बोले अभी आकाश मार्ग से आया तो आकाश में अभी तो रुका हुआ है ही, तो मुख्य मुख्य सुग्रीव आदि बांदरों को इकट्ठा करके पूछा क्यों भैया ऐसे मौके में क्या करना चाहिए। सागर उनकी परीक्षा हो रही है, सागर उनको दीक्षा दे रहे हैं भगवान राम। तो सुग्रीव प्रमुख बांदरों ने कहा देखो आप हमारी राह ले तो आपको कहते हैं ये एक तो अपने दुश्मन का भाई और फिर जाति का राक्षस, तो राक्षस जो होते हैं ना बड़े माया भी होते हैं, ये अपने माई अपनी माया कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि बलवान भी होते हैं और धोखाबाज होते हैं। इन सब बातों को सोच करके मेरी तो यही राय है कि इसको बांध करके कैद कर लो। भगवान कहते हैं सुग्रीव को बोलो वाह तुमने जो राय दी बड़ी अच्छी राय दी, जैसी राय मित्रों से मिलनी चाहिए ऐसी तुम्हारे से राय मिली, और तुमने भी राय मित्रों को जो उचित राय देनी चाहिए वैसी दी। साथ में ये बात कही कि राक्ष माया भी होते हैं, सो एक प्रकार से ठीक है किंतु मेरे सन्मुख क्या माया आ सकती है, सूर्य के सन्मुख क्या कभी अंधकार जा सकता है। तो वो बात मृदु भाव से प्रेम भाव से अपना प्रभाव दिखलाते हुए उस बात का निराकरण कर दिया। और बोले तुम कहते हो कि वो राक्षस बलवान होती हैं, तो मेरा भाई जो लक्ष्मण जो है समझा इतना बलवान है कि क्षण मात्र में सब राक्षसों को मार, मन इसके लिए भी कोई भय नहीं करना थी। और मेरे एक नियम है कि यदि ब्रह्म त्याग करके भी मेरी शरण आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, और वाल्मीकि में दिख रहा है कि जो कोई वचन मात्र से भी यह बात कह दे, वह भगवान राम कहते हैं कि कोई वचन मात्र से मुझको कह दे मैं आपका हूं, तो उसको मैं अभिग्रहण देता हूं। हनुमान जी तो भगवान के तत्व समझते थे कि ठीक है, भगवान की तो एक प्रकार से आज्ञा होगी, सम्मति होगी, ले आए भविष्ण। अब भविष्ण को तो ले आए, तो पहला भविष्ण को कुछ देकर के उससे काम लेना, बोले समुद्र का जल लाओ, जल मंगा करके उसके राज तिलक कर दिया कि लंका का राज है सो तुम्हारे को दिया गया। अब ये अपने कब्जे में नहीं है, अपने भगवान जानते हैं कब्जे में तो आ रहे हैं, तो पहले दे दे इसको, तो राज तिलक कर दिया। अरे फिर सबको उसको लंकेश कहने लगी, बिना लंका का राज मिले ही भगवान दे दिया ना, अब रोकने वाला को तो भगवान का कैसा हुआ। जो भगवान का पहले उपकार कर देता है उसके उपकार को तो भगवान भूलते ही नहीं। जैसे जटायु ने सीता को लेकर के जब रावण जा रहा है तो रावण के साथ में घोर युद्ध किया, और समझो कि रावण ने उसको काट करके गिरा दिया। मरने के समय में जो श्वास आ रहा है उस समय में भगवान राम पहुंचे और उनकी सारी बात सुनी, सुन करके भगवान रामचंद्र जी आंखों में आंसू भर करके के और अपने जटायु को गोद में लेकर के और उसकी धूल झाड़ी अपनी जटा से और फिर उसको परम धाम को भेज दिया, जो मानस भक्षी एक प्रकार से, किंतु भगवान राम का काम किया ना। और भगवान बोले कि मैं इसका क्या बदला उतार सकता हूं। इसी प्रकार से थी हनुमान जी ने भगवान की सेवा की, सीता जी के पास में खबर पहुंचाई और लक्ष्मण के लिए सजीवनी बूंटी लाए, कोई भी काम हनुमान के प्रति महाराज कहते तो एकदम आनंद के मां मुग्ध हो जाता, बड़ी प्रसन्नता होती। भगवान के मिलने से जैसे हम लोगों को प्रसन्नता हो, यदि मिल जाए तो उससे भी बढ़कर के भगवान की आज्ञा पालन में हनुमान को प्रसन्नता होती थी। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहना पड़ा कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तुम्हारे ऋण को दूर करना नहीं चाहता, कायम ही रखना चाहता हूं। क्यों? कि तुम्हारे में संकट पड़े और मैं तुम्हारा प्रतिपुकार करूं तब तुम्हारे ऋण से दूर हूं, तो मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हारे में संकट आ रहा हूं, जो चाहे मैं ऋण हो करी रहो। तो कैसा विवाद मुनियों के साथ में कैसा, और अपने प्रजा के साथ में कैसा, भाइयों के साथ में कैसा और मित्रों के साथ में कैसा, ये सब देखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, पढ़ करके गुणते नहीं, उसका अनुशीलन नहीं करते, उससे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, इस कारण से एक प्रकार से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भगवान जब लंका से लौट करके आए तो बंदरों को कहते हैं कि हमारी जो विजय हुई ये विशेष जी महाराज जो हमारे गुरु हैं इनकी कृपा से हुई है, मालूम है इनकी कृपा वहां काम कर रही थी। गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी जो रावण के साथ में युद्ध हुआ वो समर सागर था, उस सागर के पार होने के वास्ते हमारे जहाज और बेड़े